इसीलिए आगे भी बात देखें इसी चीज की आई है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज को मिटाना चाहे वो कैसे रह सकती है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदका, अल्लाह ताला मिटाता है सूद को और बढ़ाता है सदकात को। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम, अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता और ना शुक्रे से गुनाहगार से। ये ना शुक्र है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया था तो उसकी शुक्रगुजारी क्या थी? जैसे अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक उसको करे, उसने अपनी मर्जी से शुरू कर दिया। हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है ना, हम इसमें अपनी मर्जियां नहीं कर सकते। हम जहां चाहें खर्च करें, हम जहां से चाहें कमाएं। मैंने आपको वो 5 सवाल में से बताया था कि 2 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ही माल के बारे में है, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। जब इंसान इतना बेहिस हो जाए कि दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाने लगे, जाहिर है कोई मजबूर होता है तो कर्ज लेता है ना, मजबूरी से फायदा उठाना शुरू कर दे और सूद के ऊपर उसे करना। अब वो पिसता जा रहा है, उसका खून ये चूस रहा है, वो पिसता जा रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन अल्लाह ताला मिटा देता है उसका माल, या तो दुनिया में उसको ऐसा घाटा होता है ये खत्म हो जाता है, या उसमें से बरकत उठ जाती है। और आखरत का तो नुकसान बहुत ही बड़ा है, लेकिन दुनिया में ही अल्लाह ताला मिटा देता है। लेकिन जो सूद खोर होगा, सूद खाने वाला या सूद के ट्रांजेक्शन में होगा, ना उसकी उम्र में बरकत होगी, ना सेहत में बरकत होगी, ना उसका सदका कबूल होगा, ना पुरसकून जिंदगी होगी, कभी पीसफुल जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो रिजल्ट क्या हुआ? अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है और सदकात को बढ़ाता है। और मैंने आपको बढ़ाने की एक मिसाल दी कि एक खजूर उहद पहाड़ जितनी हो गई। आप सदका देते हैं किसी को, सदका देने से जो सुकून मिलता है उतना अपनी अपने ऊपर आप खर्च करेंगे उतना सुकून नहीं मिलेगा। कभी इंसान ये करके देखे, जब किसी कोई जरूरत पूरी करते हैं, किसी मजबूर की मजबूरी थी उसमें काम आ जाते हैं, तो वो जो अंदर तक सुकून उतरता है वो इससे नहीं होता जब लूट खसूट के खा रहे होते। तो दुनिया में भी उसके लिए फायदा मंद होगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बरकतों से भर देगा। तो सदकात का रिवाज होना चाहिए, सूद की कमी होनी चाहिए। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जितनी सूद की शरह बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। आप देखें कि आज मुल्कों के मुल्क सूदी निजाम की वजह से कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं और वो कर्जों से कभी निकल ही नहीं सकते शायद। अब ये गैर मुस्लिम ममालिक हैं, जापान में भी नियरली जीरो रेशो का सूद है, नियरली जीरो। और कुछ और ममालिक भी ऐसे हैं, हम उन्होंने रियलाइज कर लिया। फिजी में 0.25% पे है, मैंने वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, अब देखें पहले बता दिया गया अल्लाह ताला इन लोगों को नापसंद करता है और किन को फिर पसंद करता है। कि नापसंद किसको होता है? ना शुक्रे को और गुनाहगार को। ये ना शुक्र है जो सूद के ऊपर काम करता है और गुनाहगार भी है। और कौन है जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है? वो है जो ईमान लाए, साले अमल करे, नमाज अदा करे, जकात दे। जकात से भी लोगों की जरूरियात पूरी होती हैं। जब जकात देंगे तो इसमें मुआशरे में बाहम हमदर्दी के जज्बात होते हैं, लोग किसी की जरूरत में काम आ जाते हैं, वो लोग हो सकते किसी को कर्ज ही ना लेना पड़े। और इनके लिए अजर है इनके रब के पास, इनको कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा, अल्लाह ताला इनको पीसफुल कर देगा। लेकिन ये जो पीछे युर्बिस सदकात है और जो यमहकुल्लाहु रिबा है, ये हिसी तौर पे फिजिकल भी और मानवी भी है। और आप मानवी में एक देख सकते हैं कि जो भी सदकात करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं, साले अमल करते हैं, जकात देते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या फरमाया कि उनको खौफ और गम नहीं होगा। यानी ये जो मानवी चीज है ना, फायदा अंदरूनी, एक उनको सुकून मिलेगा, उनको एंजाइटी नहीं होगी, उनको गम नहीं लगेगा, डिप्रेशन नहीं होगा। और अल्लाह ताला इसी तौर पे भी बढ़ाएगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का माल बढ़ाता है। कोई हो सकता है कोई एक जरिया अल्लाह ताला ऐसा दे दे कि कहीं और से उसको एक और जॉब मिल जाए, एक और जरिया आमदनी शुरू हो जाए, या अल्लाह ताला उसके उसी में बरकत डाल दे। और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान की कैटेगरी के अंदर जो होगा वो तो बहुत ही घाटे में। ये बता दिया गया अल्लाह ताला को ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ताला को किन से मोहब्बत है? नेकों से, इतात गुजारों से, उनसे मोहब्बत है। तो सूद इतना बड़ा जुर्म है कि इंसान को अल्लाह ताला का महबूब नहीं बनने देता। तफसीरे तबरी में एक हदीस है कि रिबा अगरचे ज्यादा ही हो, ताहम उसका अंजाम किल्लत है, फाका है, बेबरकती है। ला यस्तविल खबीस हुआ तय्यब वलो आजबा का कसरत अल खबीस। खबीस और तय्यब कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ये नापाक है रिबा, ये कभी बराबर नहीं हो सकता पाक के, हलाल के। चाहे तुम्हें नापाक की कसरत तहज्जुब में डाल दे, चाहे तुम्हें लगे वाह क्या घर बना लिया, क्या कारोबार खड़ा कर लिया, क्या बात है, इनकी बड़े कामयाब है, और दूसरा एक बेचारा है हलाल के अंदर रह रहा है और गरीब है। आए तो तुम्हें तो कुछ आया ही नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आई, वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तुम अभी तक राय के घरों में धक्के खाते फिर रहे हो। तो उसका जो कलील है वो बेहतर है उससे जो वो कसीर आपको नजर आ रहा है लेकिन वो खबीस है। इसीलिए माल और दौलत की या औलाद की कसरत ना मांगे बल्कि बरकत मांगा करें, क्योंकि बरकत वो चीज है जो जरूरी है। और ये शुक्रगुजारी की तारीफ है, पीछे आया ना वो नाशुक्रा है। तो शुक्रगुजार कौन होता है? वो जो ईमान लाया, साले अमल किए, नमाज पढ़ी, जकात दी। फिर या युहल्लदीना आमनू, अब ईमान वालों को फिर से एक पुकार दी जा रही है। ये आयत या युहल्लदीना आमनू से शुरू हो रही है और इन कुन तुम मोमिनीन पे खत्म हो रही है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम हकीकी मोमिन हो, अगर वाकई तुम मोमिन हो, तुम कहते हो ना हम ईमान वाले हैं, अगर वाकई मोमिन हो तो क्या करो? ये बीच में पढ़े या युहल्लदीना आमनू तक्ल्ला, फिर अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, इन चीजों को छोड़ दो। डरने का मतलब बस ये नहीं कि हाय हाय बस मुझे बड़ा डर लगता है, मतलब है बचो जो गुनाह के काम है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी है उसको छोड़ दो। वज़रू मा बकिया मिन अर्रिबा, और छोड़ दो जो बाकी रह गया सूद में से, सूद में से जो कुछ बाकी रह गया वो सब छोड़ दो। यानी किसी को दिया हुआ था, अब क्या है वापिस का इस शर्त पे लेना था कि सूद समेत लें, लेकिन अब वो सूद को छोड़ दो तुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में सूद का लेन देन हो ना, अल्लाह ताला वहां पर जरूरियात की चीजें महंगी कर देता है, महंगाई हो जाती है, वहां पर मुश्किल से मिलना शुरू होती है, मुश्किल हो जाती है उनको पाने में। तो अल्लाह का डर करो, ये इंसानों के लिए ही बेहतर है। देखें कोई सूद ले रहा है नहीं ले रहा, उसका अल्लाह ताला को ना कोई फायदा तो ना कोई नुकसान, उसका कोई नुकसान नहीं, मगर ये इंसानियत की भलाई, अल्लाह ताला हमारे से ज्यादा हमारा हमदर्द है, हमें लगता है कि इस चीज में हमारे लिए खैर है, उसमें हमारे लिए खैर नहीं है। कोई खैर की चीज होती तो जरूर अल्लाह ताला हमारे लिए उसको हलाल करता है। जो चीज हमारे लिए नुकसान दे, और उसका नुकसान आज आप दुनिया भर में देख रहे हैं, उन चीजों से बाज आओ, छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद में से। यानी इंसान जो असल है वो वापिस ले सकता है, जो असल उसने किसी को दिया है, मतलब किसी को 1 लाख दिया था ना, वो 1 लाख वापिस ले सकता है। ये नहीं कि आप वो भी नहीं वापिस देना, मगर बाकी को छोड़ दो। कहा जाता है कि सकीफ ने अपनी असल रकूम का बनू मुगैरा से मुतालबा किया, तो बनू मुगैरा ने उनको, उन्होंने कर्ज भी दी हुई थी कुछ रकम, तो बनू मुगैरा ने अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा हमारे पास इस वक्त माल नहीं है, और कहा जिस वक्त हमारे फल उतरेंगे उस वक्त हम देंगे। तो उस वक्त ये अगली आयत उतरी, अच्छा नहीं ये सॉरी ये 280 आयत की उसके अंदर है। इसमें एक आती है, एक और वाक्य आता है कि एक कबीले ने दूसरे को कर्ज दिया हुआ था, और उन्होंने कर्ज का जब मुतालबा किया, और अब आयात उतर चुकी थी कि अब सूद के ऊपर नहीं कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बताया कि सूद वाली रकम नहीं देनी और असल जो है वो ही बस वापिस करनी है। तो जो सूद में से रह गया है वो छोड़ दो, यानी सूद को छोड़ दो। फइल्लम तफालु, अब कोई होगा जो कहेगा फिर भी कि नहीं मैंने नहीं, हमारी तो मजबूरी है, हम क्या करें, हमारा तो ये है तो वो है और पता नहीं क्या क्या मसाइल, तो उसकी आगे बात आ रही कि जो फिर भी ना माने। अच्छा एक मसला और पीछे से ये समझ लें कि यहां पे खवारिज ने कहा, जो खवारिज है ना वो तो कहते हैं ना कि जिसने कबीरा गुनाह कर दिया वो काफिर हो गया, तो वो यहां से फिर लेकर आते हैं कि सूद लेने वाला तो देखे मोमिन ही नहीं है, इनकुन तो मोमिनीन कहा गया यहाँ पे, अगर तुम मोमिन हो तो फिर छोड़ दो, तो जो नहीं छोड़ता तो इसका मतलब है कि वो तो ईमान वाला ही नहीं, वो काफिर हो गया, अब उसको हम कत्ल भी करेंगे ये भी करेंगे, और फिर वो उससे बहुत सारे मसले मसाइल निकाल लेते हैं। तो इसमें अहले सुन्ना वल जमा का हम ये कहते हैं कि सूद है या कोई भी कबीरा गुनाह, उसको करने से कोई मुसलमान फासिक फाजिर जरूर हो सकता है, उसका ईमान नाकिस जरूर हो सकता है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि वो अब ईमान से बाहर हो गया। यहां पे इनको तो मोमिनीन का मतलब क्या, अगर तुम वाकई हकीकी ईमान वाले हो, ये नहीं है कि अगर तुम यानी तुम ईमान से बाहर हो जाते हो अगर तुम ये करोगे, अगर हकीकी तौर पे जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहे ना अगर तुम वाकई मेरे बच्चे हो ना तो तुम ये काम कभी ना करना, ठीक है। तो अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि अगर वो काम करेगा तो वो माँ का बच्चा खत्म हो जाएगा, वो अब नहीं उसका बच्चा है, वो फिर भी उसका बच्चा है लेकिन नालायक बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग जो इस तरह की तावीलें करते हैं, आपको पास उसका जवाब होना चाहिए कि देखिए ये खवारिज की दलील का जवाब है। अच्छा अब वो जो पहले कह दिया गया कि ये हराम है, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ दो, तो हज्जतुल विदा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत अब्बास के सूदी मामले को खत्म कर दिया था कि वो अब जो उन्होंने कर्ज किसी को दिए हैं तो अब लौटाते वक्त सूद समेत नहीं होगा, सूद अब किसी से नहीं लिया जाएगा, सूद खत्म है। और इसी से पता चलता है हमें कि ये जो आयात भी उतरी हैं और ये जो मामलात हैं सूद की हराम होने के, ये बिल्कुल एंड के मामलात में से है, यानी इससे पहले कराहियत तो थी लेकिन और आयात भी उतरी हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि सूद को हराम जो करार दिया गया हो ना वो इन आयात के बाद हुआ, जिनके लिए फिर बिल्कुल यानी एंड में ये अहकाम आए। इसी वजह से हजरत उमर ने फरमाया था कि ये वो हुक्म है जिसके बारे में अगर हमें थोड़ा कुछ और पता चल जाता तो बेहतर था, और कुछ वाजे हो जाता तो बेहतर था, क्योंकि वो उन्होंने फरमाया तीन मसले ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे हुक्म फरमाया और जिसमें हम मतलब वजाहत तो कर दी थी लेकिन कुछ और हमारे पास, यानी अगर होता तो बेहतर था, जिससे हम मुतमईन हो जाते। ये बुखारी में रिवायत है। एक तो दादा का हिस्सा है मेरास, एक कलाला का हिस्सा है मेरास, ये अभी आप छोड़ दें कि ये क्या है। तीसरे के ऊपर देखें रिबा से मुतालिक बाज मसाइल, क्योंकि रिबा जो है ना, ये एक तो इतना कॉम्प्लेक्स है, और आज और ज्यादा कई ऐसे सेक्शंस आ गए हैं कई चीजों में होता है कि हमें फिर समझ नहीं आती कि क्या ये रिबा है। आप सरसर ने इसके बारे में बताया भी है कि इसके बहुत सारे दर्जे भी हैं, बहुत सारे दर्जे हैं। तो बल्कि एक जगह पे हमें पता चलता है कि एक वक्त आएगा कि हर एक सूद में मुलव्वस हो जाएगा। साहबा ने पूछा, सब के सब? आपने फरमाया, जो खाएगा नहीं ना, उसको भी गुबार तो पहुंचेगा। गुबार यानी वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे वो, उसमें थोड़ी बहुत उसको, उस तक भी पहुंच जाएगी। मसलन आज बैंक है, अब बैंक में आपको पैसे रखने ही रखने हैं, क्योंकि आप घरों में रख ही नहीं सकते। एक तो सेफ्टी ना होने की वजह से सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात ये कि कई लोगों की जॉब्स की तरफ से, इसकी तरफ से उनकी पे ही बैंक में आती है, आपको खुलवाना ही पड़ता है अकाउंट, उसके बगैर चारा ही नहीं है। कई जगह पे आपसे मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, अब आपके पास चारा ही नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। तो इतना ज्यादा है ये कि उससे आप बचना उस तरह से मुमकिन नहीं रहा। गुबार तो है, कई कंपनियां ऐसी हैं कि वो ऐसी जगहों पे उन्होंने कर्जे लिए हुए या कुछ किया हुआ है, तो उसके अंदर भी कोई लोग काम कर रहे हैं। अब गुबार तो पहुंच रहा है ना लोगों को, तो अगर डायरेक्टली ना भी इन्वॉल्व हो, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसा हो जाएगा, डायरेक्टली ना भी खाए तो फरमाया इलम तफालु, अगर तुम बाज नहीं आते फिर भी नहीं रुकते, फाजनु, तो खबरदार हो जाओ, वार्निंग है, ऐलान है, बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, जंग के लिए फिर खबरदार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, कि इंसान इसकी तो कभी भी ताकत रख ही नहीं सकता कि वो ये अफोर्ड कर सके कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग। इतना बड़ा ये गुनाह है कि इस जैसी आयत या इसकी तरह की बात किसी और गुनाह पे नहीं की गई कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। और एक रिवायत में ये भी आता है कि कयामत के दिन ऐसे शख्स को कहा जाएगा, जंग के लिए अपने हथियार उठा लो। तो ये पक्की पक्की जंग है, और जिसने जंग ले ली अल्लाह और उसके रसूल के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी शिफात कराएंगे कयामत के दिन? क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके लिए वहां पे खड़े होंगे कयामत के दिन? उनसे तो जंग ली भी है उसने, और फिर वो अल्लाह की मदद कैसे एक्सपेक्ट करता है? अल्लाह अकबर। तो इसलिए जंग लेना इतनी बड़ी बात है, और इतना बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। फइन तुबतुम, अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम रुउसु अम्वालिकुम, तो ठीक है, तुम्हें जो तुम्हारे माल का रासुल माल है वो मिल जाएगा। रासुल माल क्या है? कैपिटल, जो जो मैंने आपको जैसे बताया कि 1 लाख दिया तो 1 लाख मिल जाएगा, मगर जो ऊपर सूद था वो नहीं। ला तज़लिमूना वला तुज़लमू, ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम जुल्म किए जाओगे। तुम्हारा जुल्म करना क्या है कि तुम लोगों से सूद पे लो, तुम पर जुल्म किया जाना क्या है कि भाई 1 लाख मैंने दिया, मेरा तो 1 लाख भी गया, वो तो वापस दे दो। ऐसा नहीं होगा, आपको 1 लाख तो आपका मिल जाएगा, क्योंकि वो आपने इतना तो आपने दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखें, बहुत जेन्युइन बात है कि आज 1 लाख की जो वैल्यू है, मैंने 10 साल के लिए मसलन किसी को कर्ज दे दिया, 10 साल बाद जो वो मुझे 1 लाख देगा, कुछ भी नहीं उसका आएगा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, ये पेपर मनी के नुकसान है, पेपर मनी करेंसी के। पहले जमाने के अंदर इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती थी, चीज के बदले चीज होती थी, या सोने के साथ काम होते थे, सोने की अशरफियां होती थी, दीनार दिरहम होते थे, उनके साथ होती थी जिनकी वैल्यू कोई होती थी। आज क्या पेपर मनी की क्या वैल्यू है, किस करेंसी में आप रख रहे हैं, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई क्या हो रही है, कोई बिल्कुल ही बैठ गई कोई करेंसी, तो आपका कैसे बैठे बिठाए नुकसान हो गया। तो अब क्या इसका हल है कि 10 साल बाद आप वाकई देख लें, आज जो चीज 1 लाख डॉलर की आएगी, अब तो इतनी इन्फ्लेशन हो गई कि 2-3 सालों में ही उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब 1 लाख में मसलन आज आप एक घर खरीद सकते हैं, 10 साल बाद वो ही घर 2 लाख का हो गया। मैं अब आपको वो 1 लाख वापस देता है, आपके क्या काम का, ये समझ आ रही है बात। वो कहते हैं कि फिर हम क्या करें उसके ऊपर, तो उसका तरीका ये है, अमल की बात आपको बता रही हूं, कि मसलन आज आप जो 1 लाख दें तो उसको करेंसी के उसमें नहीं बल्कि सोने के मुताबिक से अपने कर्ज दें। मसलन आज आपने 1 लाख दिया है, जो अगर 2-4 महीने में देना फिर तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने 10 साल 20 साल इस तरह का कर्ज दे दिया, 5 साल का भी इवन, तो आप देखें आज उस 1 लाख से मसलन 1 लाख से 1 तोले सोना आता है, 1 तोले सोना आज 1 लाख से आ रहा है, आपने कहा कि 10 साल बाद भी 1 तोले सोने के बराबर ही मुझे वापस लौटाया जाए, तो ठीक है फिर। जैसे मसलन आज आपने किसी को 1 तोला सोना लेके दे दिया और 10 साल बाद आप उसे 1 तोला सोना ही वापस ले लेते हैं, तो ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि सोने और चांदी की ट्रांजैक्शन ये सही है, पेपर मनी सिर्फ लोगों का खून चूसने का एक तरीका है। तो ना तुम पे जुल्म किया जाएगा कि तुम्हें ही माल से डिप्राइव कर दिया जाए, ना तुम जुल्म करो लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला ने तो किसी के ऊपर जुल्म को भी नहीं वो रखा, जुल्म को हराम करार दिया। वमा अना बिज़ल्लाम लिल अबी, सूरह काफ में आता है, मैं अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं हूं। तो इसको अपने पर जुल्म ना समझे कि को अब हाय हमारे तो हमने तो पैसे दिए थे और क्या हमारा फायदा हुआ, बल्कि लोगों को सदकात दें, कर्ज़े हसना दें। और इसके ऊपर अभी बात हम अमल की बात में ये करते हैं कि इसका हल क्या है, कर्ज़े हसना। कर्ज़े हसना कौन सा कर्ज है कि जिसमें जैसे मैंने आपको ये कहा, अगर आपको ये डर है कि इन्फ्लेशन हो जाएगी और आज मैंने किसी को अगर 2 लाख दे दिए, मैंने कहा भाई अपनी पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे दे देना, वो जब पढ़ाई खत्म करके देता है वो 2 लाख क्या कौड़ियों के बाए हो गए, वो तो आज के यानी 20 हजार के बराबर हो गए, वो 2 लाख उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो क्या करना है ऐसे पैसों को, तो इसलिए हमें तो नुकसान है। तो ऐसे नहीं, सोने के भाव के ऊपर कर लें। और इसी तरह सदकात दें ज्यादा। जो बंदा आप सरसलम ने फरमाया अपने मोमिन भाई की किसी तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह ताला उसकी तकलीफों में से तकलीफ को दूर कर देगा कयामत के दिन। तो आज ये सोच के किसी की तकलीफ को दूर कर दें, किसी की मजबूरी हो, कर्ज जो लेने हैं वो ऐसी चीजों के लिए नहीं लेने चाहिए जो लग्जरीज हैं, बल्कि कर्ज नीड बेस पे होना चाहिए। सबसे पहली तो ये बात है, मसलन है कि किसी ने घर लेना है, तालीम है, इलाज है, कारोबार शुरू करना है, उसके ऊपर मजबूरी है, क्या है नहीं, उसके पास नहीं है सरमाया, तो चलो उसके ऊपर एक बात समझ आती है। लेकिन कर्ज लेना इसलिए वो क्रेडिट कार्ड पे चढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज ज्यादा लग्जरी की लेनी है, शादियां इतनी लेविश करनी है, हमने ऐसी चीजें करनी है, तो ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। अब इसका हल क्या है, देखिए हम चले हल से पहले मैं पहले अब इसको इसकी कबाहत के ऊपर आपको कुछ और हदीस बता देती हूँ ताकि आपको उसकी संगीनी का इल्म हो। यहाँ एक तो आपको ये बात पता चल गई कि जो लोग सूद पर ट्रांजेक्शन करते हैं वो कयामत के दिन खड़े नहीं होंगे, मगर ऐसे जैसे बावले होते हैं, जैसे पागल कुत्ते ने काट लिया वो पागल हो जाता बंदा, शैतान ने मस कर दिया, नंबर 1 ये सजा। नंबर 2 के उसके लिए वो असहाबुन नार में होगा, नंबर 3 हम फीहा खालिदून होगा, उसमें हमेशा रहने वाला होगा, 4, अल्लाह ताला उसके माल को मिटा देगा। अल्लाह ताला सूद जिसमें पड़ जाए उसको अल्लाह ताला खत्म कर देता है, उसकी बरकत चली जाएगी या वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5, ये ईमान का तकाजा है, अगर हकीकी मोमिन बनना चाहते हैं तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। 6, अल्लाह और उससे रसूल से जंग है, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग के बराबर है। ये 6 बातें यहां पे बता दी गई। अब मैं आपको हदीस के हवाले से बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सूद का 1 दिरहम भी जो वसूल करता है वो अल्लाह ताला के नजदीक 33 बार जिना करने से ज्यादा सख्त है। 33 टाइम्स जिना करने से ज्यादा सख्त है। किसी आदमी को कोई जानी करार दे दे, किसी औरत को जानिया करार दे दे, 1 दफा नहीं 33 दफा, ये 1 दिरहम भी वसूल जो कर रहा। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 72 दर्जे, 72, 72 दर्जे, सबसे कम दर्जा ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नहीं, सबसे हल्का सूद का दर्जा ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे, ये इतना बुरा फेल है। हाँ, इमाम अबू याला ने ये रिवायत की है। अच्छा, ये पहली जो रिवायत थी ये भी तबरानी की है, और इमाम अबू याला ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद की कसरत हो जाती है उस कौम पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अब अल्लाह का अजाब आएगा ही आएगा उन पे। अब ये ना, मैं इसलिए किताबों के नाम भी बोल रही हूँ, आप इनके नाम भी प्रोनाउंस करने भी सीखें, किस तरह से बोले जाते हैं। या आइन लाम और या के ऊपर खड़ी अलिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद में है कि जिस कौम में सूद की कसरत होती है उस कौम पर कहत साली मुसल्लत कर दी जाती। सोचें आप, कहत साली, वही बात के चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा में रिवायत है, जिस रात मुझे मेराज कराई गई मुझे एक ऐसी कौम के पास से गुजारा गया जिनके पेट कोठड़ियों की तरह थे, यानी इतने बड़े बड़े पेट थे, उनके पेटों में बाहर से सांप नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया, ये लोग सूद खाने वाले हैं, ये उनको अजाब हो रहा होता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और इब्ने माजा में भी जो पिछली तबरानी वाली रिवायत से मिलती जुलती रिवायत है कि सूद के 70 गुनाह हैं और उनमें से सबसे हल्का ये है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करे, सबसे हल्का गुना। इससे ऊपर हैं जो अबव 69 जो होंगे वो कितने बड़े बड़े होंगे। फिर ऐसा बंदा कैसे अल्लाह ताला की रहमत पाएगा, कयामत के दिन कैसे कामयाब होगा, वो तो फेलियर ही फेलियर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की रिवायत है, कि मैंने एक ख्वाब देखा कि मुझे जिब्राइल और मीकाईल ले गए हैं, मैंने देखा खून का एक दरिया है जिसके बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ है, और दरिया के किनारे के पास एक आदमी हाथ में पत्थर लिए हुए खड़ा हुआ है। जब दरिया में खड़ा हुआ शख्स किनारे की तरफ आने की कोशिश करता है, यानी वो तैरता हुआ जाता है, डूबने लगा हुआ है, वो तैरता हुआ जाता है किनारे की तरफ, तो किनारे पे खड़ा हुआ शख्स उसके मुंह में पत्थर ठूंसता है और उसको फिर उस दरिया के अंदर धकेल देता है, और जब वो दरिया से जब निकलने की कोशिश करता है तब वो पत्थर मुंह के अंदर ठूंसता है और उसको फिर से धक्का देता है दरिया के अंदर, और यही होता जा रहा है और कयामत तक होता रहेगा। मुझे जिब्राइल और मीकाईल ने बताया कि खून के दरिया में डूबा हुआ ये आदमी सूदखोर है। अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि ये लोगों का खून चूसता था ना, तो इसको खून के दरिया में ही अल्लाह ताला ने डाला, ये अजाबे कबर है उसका, यानी जो अजाबे कबर होता है ये वो है जो उसको होता जाता है, फिर कयामत तक होता रहेगा। और फिर अगर कोई, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, है इस गुनाह में पड़ जाए और फिर उसके बाद भी ये बातें सुन के ना फिर भी अपने आप को फिक्स करे, तो फिर सोचें कि वो कितना बड़ा खसारे में है, कितना बड़ा खसारे में। अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखें अल्लाह ताला कैसी सोसाइटी चाहता है, और किस चीज के लिए इनकरेज किया गया, सदकात के लिए। कितना इनकरेज किया गया, कितना मोटिवेट किया गया, कहा गया इतना मिलेगा, तुम इतना मिलेगा, बरकतें होंगी, इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब है अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि आप सदकात करें बगैर कुछ पाए हुए देने वाले बने। और इसके लिए जहां तक हो सके इंसान ये कोशिश करे कि अपने हाथ से दूसरों की मदद करता रहे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि वो फकीर ही हो, ऐसा इंसान भी जो कि नहीं इतना अफोर्ड कर सकता कि वो ये अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके, उनको दे। तो सदकात जो आप देते हैं बगैर मुआवजे के देते हैं, आप कुछ लेना नहीं चाहते, जबकि सूद में आप उसका खून ही निचोड़ लेते। जितना उसने देना था उससे भी डबल ट्रिपल हो गया, क्योंकि जाहिर है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उससे पूरा तो अदा हो ही नहीं रहा। तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला सूद का खात्मा चाहता है, इसीलिए आप देखें यहां पर इतनी बड़ी वईद बताई गई ताकि सूद खत्म हो। तो किस चीज को बढ़ावा दिया जाना है और किस चीज को कम किया जाने की कोशिश है, वो यहां से आपको पता चल रही है। तो सूद चाहे किसी चीज के लिए हो, गाड़ी के लिए हो, घर के लिए लेना हो किसी को, तालीम के लिए लेना हो किसी को, याद रखिए वो हराम ही है। हम ये उसके अंदर हीले बहाने नहीं कर सकते कि कोई मजबूरी है, फलाना है, ये है, वो है। हाँ, फिर हल इसका क्या है? ठीक है, हमें इतनी बातें पता चल गई, अब हल क्या है? इस्लामिक बैंक्स बनाएं, कर्जे हसना दे, इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग भी ऐसी हो सकती है जिस जो सूद से पाक हो, ऐसे मॉडल्स लेकर आए जो सूद से पाक बैंकिंग के हो। ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जिन जो अपनी कम्युनिटीज में, गैर मुस्लिम है वो अपनी कम्युनिटीज में उन्होंने अपना ही बैंक बनाया हुआ, वो अपने ही लोगों को देते हैं सूद से पाक कि चलो तुम बिजनेस कर लो, चलो तुम्हारी और कोई जरूरत है तो वो पूरी कर लो, और मुसलमान इसमें पीछे हैं। और लोग तो छोड़े, मुल्क के मुल्क इसके अंदर डूबे हैं, फिर कैसे अल्लाह की रहमत आएगी? वह इनका नुज़ू उसरतिन, और अगर कोई तंग दस्त है वो नहीं दे सकता, यानी मकरूज है, किसकी बात हो रही है? वो जिसने कर्जा लिया है लेकिन वो तंग दस्त है। फनज़िरतुन इला मईसरा, तो मोहलत देना है आसानी तक, मोहलत दे दो। फिर जैसे मैंने आपको ये रिवायत अभी बताई है कि बनू सकीफ ने वो बनू मुगीरा से मांगा, और वो बनू मुगीरा ने कहा कि हम तो बहुत ही तंग दस्ती है, तब ये आयत नाजिल हुई कि इसको अगर तुम मोहलत दे दोगे या माफ कर दोगे तो ये बेहतरीन सदका है। वह अंत सदकू खैर उन लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये वो सदका है जो बेहतरीन सदका है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम मोहलत दे रहे हो उसको, तुम उसको या माफ ही कर रहे हो उसको, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अबू कतादा से एक आदमी ने कर्ज लिया हुआ था, अब वो उससे कर्ज जब भी मांगने जाते थे वो छुप जाता था जाके। एक दिन वो गए तो दरवाजे पे एक बच्चा था, उससे पूछा गया तुम्हारा बाप कहाँ है? उसने कहा वो अंदर बैठ के कुछ खा रहा है। उन्होंने आवाज दी वहीं से कि बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, तुम बाहर आओ। वो आया तो बोले कि तुम मुझसे छुपते क्यों हो? वो कहने लगा मैं बहुत तंग दस्त हूँ, मेरे पास कर्ज लौटाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं छुप जाता हूँ कि आपसे कर्ज लिया हुआ। आपने फरमाया तुम वाकई तंग दोस्त हो? वो बोला जी हाँ। आपसे हजरत अबू कुदादा ने फरमाया क्योंकि कसम खुदा की क्या तुम वाकई तंग दस्त हो? वो बोला जी हाँ। तो अबू कुदादा रोने लगे, फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने मकरूज को मोहलत दी या कर्ज को माफ कर दिया तो ऐसा शख्स रोजे कयामत अर्शे इलाही के साए में होगा। अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उसको देगा जो एक मकरूज जो है उसको मोहलत दे देता।
हम तो तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, आए हमारा फौरन इसी वक्त दो, और ये भाग गए पैसे लेके भाग गए। देखो ऐसे हो गया, अगर कोई तंग दस्त है और अगर आपने उसको मोहलत दे दी, कितना बड़ा इनाम है। उस दिन साया मिलेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का किसी आदमी पे कोई हक है और वो उसको डिले करता है ना, डिले करता है, मसला ना है, आप ने किसी को कोई पैसे दिए हैं या किसी ने आपको पैसे देने हैं, कोई हक है आपका और डिले होता जा रहा है, वो उसको डिले कर रहा है, तो हर रोज सदका करने का अजर आपको मिलेगा। जैसे किसी ने आपको देने ही थे, मतलब कोई प्रॉफिट हुआ था, कहीं आपने लगाया हुआ था, या कुछ कोई भी ऐसा था कि जो आपका हक है उसने आपको देना है, लेकिन डिले होता जा रहा है। अब आपको चूंकि इस डेट को मिलना था, नहीं मिला, वो आपके लिए सदका लिखा जा रहा है। और एक और हदीस जो बड़ी प्यारी है, इमाम अहमद ने, इमाम इब्ने माजा ने, इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया, इमाम बहकी ने, हजरत बुरैदा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तंगदस्त को मोहलत दी उसको हर दिन कर्ज के बराबर सदका करने का अजर मिलेगा। फिर मैंने आपसे सुना जिसने तंगदस्त को मोहलत दी उसको हर दिन उस कर्ज के दुगने सदके का अजर मिलेगा। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पहले तो आपने कर्ज के बराबर सदका का अजर फरमाया, अब आपने दुगना सदके का अजर फरमाया, तो ये क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक कर्ज की मियाद पूरी नहीं होती उसको हर रोज इस कर्ज के बराबर सदका मिलेगा, और जब कर्ज की मियाद पूरी हो जाए और वो उसको मोहलत दे दे फिर उसको हर रोज के दुगने सदके का अजर मिलता रहेगा। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। मसलन है, आपने किसी को 1 लाख कर्ज दिया और आपने कहा कि 1 महीने बाद पहली तारीख को आपने मुझे वापस करना। अब वो तंग दस्त है, आपने उसको कर्ज दिया, हर दिन पहली तारीख तक आपको 1 लाख सदका करने का अजर मिलता जाएगा। अब पहली तारीख आई और उसने कहा मेरे पास तो है नहीं, मुझे पता है आपका कर्ज देना है, मेरे पास नहीं है इस वक्त, मैं क्या करूं, वो बड़ी मुश्किल के अंदर है। आपने उसको कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास इस वक्त नहीं है ना, मैं तुम्हें 3 महीने का और टाइम दे देती हूं। अब 3 महीने तक, नेक्स्ट 3 महीने तक आपको क्या मिलेगा बताएं? एक 1 लाख का नहीं, 2 लाख, डबल डबल सदके का अजर मिलेगा। 2 लाख आपको अल्लाह के रास्ते में एवरी डे सदका करने का अजर मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर, और क्या चाहिए? कर्जदार को इतनी मोहलत दो, कहाँ ये कि एक बंदा सूद खो रहा है वो उसका खून निचोड़ा और दूसरे बंदा कह रहा है कि हाय मैंने अगर पहली को ना दिया ये जो 1 लाख है ये 1,05,000 बन जाएगा, फिर साल बाद 1,20,000 बन जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा, मेरे मेरे ऊपर तो बढ़ता ही जाएगा, मैं तो और ही कमर टूट जाएगी। वो पहले ही बेचारा जरूरतमंद था, अब और ज्यादा वो कर्ज में दब गया। कहाँ वो है और कहाँ ये जिसको ये लालच है, मेरा अल्लाह मेरे लिए तो रोज सदके का अजर मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं तुम 6 महीने बाद दे देना, कोई बात नहीं तुम साल बाद दे देना। कैसी सोसाइटी आपको लगेगी अगर ऐसा हो, जहां पे हर कोई दूसरे के लिए खैर हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको भी मुसनद अहमद में इमाम अहमद ने रिवायत किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल की जाए और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए वो तंगदस्त के लिए कुशादगी करें। इसका मतलब दुआएं भी कबूल होती हैं, हमारी मुसीबत दूर हो जाती है अगर हम किसी ऐसे बंदे को जो कि बेचारा गरीब है वो नहीं लौटा पा रहा, आप उसको मोहलत दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, ये नहीं हाँ मैंने तो पहले ही तुम्हें 1 महीना दे दिया था, अब दो इधर मुझे, उसके दरवाजे पीट रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। अगर आपके पास कशाइश है और आपको लगता है ये बेचारे की मुश्किल है, आप उसके लिए मोहलत देते हैं, अल्लाह आपकी मुसीबत दूर कर देता है, आपकी दुआएं कबूल होने लगती। और एक इतनी प्यारी रिवायत और है जिसको भी बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने एक शख्स को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तुमने दुनिया में क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह मैंने दुनिया में एक जर्रे बराबर भी नेकी नहीं की जो मैं पेश कर सकूं। एक जर्रे बराबर भी मेरे पास नेकी नहीं है जिसकी मैं उम्मीद रख सकूं, वही नेकी नहीं है जो मैं दिखा सकूं। 3 दफा वो यही बातें कहेगा। फिर तीसरी दफा कहेगा, हाँ बस एक बात है कि मैं दुनिया में जो मेरा माल होता था जायद वो दे दिया करता था, मैं लोगों को चीजें बेचता था, अमीर आदमी पे आसानी करता था और गरीब को मोहलत देता था। अल्लाह अकबर। यानी अमीर है या गरीब है, मोहलत दे दिया करता था, आसानी कर दिया करता था, लोगों को देता था ना अपना माल, कोई कर्ज दे दिया किसी को या कुछ, यानी ऐसा लोगों के साथ लाइट मामला करता था, हाथ हल्का, जिसको कहते हैं ना मैं हाथ हल्का रखता था, तो किसी को सर पे नहीं आ जाता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे ज्यादा माफ करने का हकदार हूं। यानी तुम लोगों से दरगुजर करते थे ना, तो तुमसे ज्यादा तो मैं हूं जो लोगों को बख्शने वाला हूं। ऐ फरिश्ते हो, इसको छोड़ दो, मैंने इसको बख्श दिया। अल्लाह अकबर। ये इतने हौसले कहाँ से लाएं कि हम किसी को मोहलत दे सकें या किसी के साथ आसानी का मामला कर सकें? हमारे तो गले का फंदा बन जाता है। अल्लाह अकबर। ये कैसे लोग होंगे और ये कैसी सोसाइटी होगी जिसमें ऐसे लोग हों? और मैंने आपको पहले बताया ना, अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा उसको जो मकरूज को मोहलत देता है या उसको माफ कर देते। फिर आखिरी दुरुल मंसूर की ये रिवायत है इमाम अहमद से ही, कि इब्ने अब्बास से रिवायत है, जिस शख्स ने किसी तंग दस्त को मोहलत दी या उसका कर्ज माफ कर दिया, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की तपिश से महफूज रखेगा। इतने सारे इनामात, इतने सारे इनामात, इतनी सारी बातें, कहीं पे अर्श का साया मिल रहा है, कहीं पे दुआएं कबूल हो रही हैं, कहीं पे दुनिया की मुसीबतें दूर हो रही हैं, कहीं पे गुनाहों से तौबा की मोहलत अल्लाह ताला ले रहा है, ये भी रिवायत है जो मैंने अभी आपको सुनाई है, कहीं पे आपको सदका करने का हर दिन अजर मिलता जा रहा है, कहीं पे अल्लाह ताला उस दिन माफ कर देता है, और कहीं पे जहन्नुम की आग से वो बंदा महफूज हो जाता है। और क्या चाहिए? फिर भी ऐसे लोग हैं जो कि कर्ज दे के फिर लोगों को तंग करने से नहीं बाज आते, उनको धमकियां देते हैं, उनको डरावे देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनकी जिंदगी अजीरन कर देते हैं। उनको पता नहीं जो कर्ज ले लेता उसको रात को नींद भी कैसे आती होगी। तो जहां कहा गया सदका कर दो, अगर माफ नहीं कर सकते मोहलत दे दो। नहीं, ये तो चौड़ हो जाएंगे, ये तो फिर हमें देंगे ही नहीं वापस, हम ऐसे। वो आपको तो एवरी डे आपको सदका करने का अजर मिलता जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये कितनी प्यारी बातें, और इससे कैसी सोसाइटी पता चलती है कि ये कैसी सोसाइटी होगी जिसमें हर कोई दूसरे का एहसास कर रहा है, हर कोई दूसरे की मजबूरी को अपनी लिए वो समझ लेता है कि जैसे कि मेरा मेरी मजबूरी है, जैसे ये मेरा काम है, हर एक दूसरे का खैर ख्वाह है, दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैंने आपको क्या हल बताया कि देखें इस तरह की बैंकिंग निजाम बनाया जाए, इस तरह के कर्ज हसना दिया जाए, और ऐसी तालीम, जब हमारे बच्चे तालीम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो फीसें भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे बच्चों के लिए कोई इस तरह के इंतजाम किए जाएं, या इस तरह ही किसी ने घर बनाना है, अब वो क्या करे, उसकी मजबूरी है, अब वो उसको रेंटल घर भी इतने ज्यादा नहीं मिलते कि जब माशाल्लाह फैमिली बड़ी होती है तो रेंटल हाउस भी मिलना मुश्किल हो जाता है, अब वो क्या करे उस वक्त? उसके लिए कोई कर्ज हसना का बंदोबस्त होना चाहिए या कोई ऐसे बैंक्स होने चाहिए जो हमें आगे बढ़ के बनाने चाहिए। खास तौर पे मुखय्यर हजरात जो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, कभी कभी उनको समझ ही नहीं आती कि पैसा किधर फेंके हम, इसीलिए वो फिर शादियों पे उड़ाते हैं। लोग कहते हैं किसके पास कितना पैसा है, ये उसी वक्त दिखाना है हमने जब कोई शादी है, पता तो चले हमारे पास पैसा कितना है, इतना इसका मतलब इतना था ना पड़ावा जो आप लुटाते रहे शादी पे। इन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होता है तो फिर हम सबसे गरीब बन जाते हैं। तो बजाय इस तरह की फजूल चीजों के ऊपर खर्च करने के, इंसान क्यों नहीं ऐसे करता कि हर रोज सदके का अजर मिलता जाए। देखिए जब तक उसको मोहलत दी भी थी, मसलन आपने अगले साल लौटाना है, अगले साल तक भी हर रोज एक सदके का अजर मिलेगा, और एक साल के बाद तो फिर जब उसे नहीं लौटाया तो उसके बाद तो डबल ही हो गया, तो फायदा ही फायदा, नुकसान तो कुछ नहीं है। लेकिन बात है कि आसानियां करना अल्लाह ताला के बंदों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए जो आसानी करेगा, पता चलता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा। फिर वत्तकु यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह, ये वो आयत है जो आखिरी आयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, इसके बाद कोई आयत नाजिल नहीं हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आखिरी आयत में क्या पैगाम है? अच्छा, अगर हमें पता चल जाए कोई दुनिया से जा रहा है हमारा प्यारा, और वो आखिरी वक्त में ये बात कह के गया है, इसके बाद देखिए ना कुरान के बाद कोई और कलाम नहीं उतरना अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला क्या चीज चाहता है जो कि हम याद रखें, जो कि हम ऐसी चीज है जो कि हमें ना भूले, जिसकी जिसको दोबारा एक रीइन्फोर्स कराया जाए। एक जगह पे तो आता है जामिल बयान में कि ये आयत हफ्ते के दिन नाजिल हुई, और इसके नजूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिन सिर्फ जिंदा रहे, और बाज रिवायात में 3 दिन भी है, सॉरी 7 दिन भी है। लेकिन यही हमें पता चलता है कि कुरान करीम की ये आखिरी आयत है, इब्ने अब्बास ने ये रिवायत किया, आखिरी आयत। और आखिरी आयत को ये सोच के पढ़ें और समझें कि कौन सी वो बात होगी जिस जो इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आखिर बात वही कही गई अल्लाह ताला की तरफ से। वत्तकू, डरो यौमन उस दिन से, तुरजाउना फीही इलल्लाह, जब तुम लौटाए जाओगे अल्लाह ताला की तरफ। सारी ही बातों की एक बात है, जितनी भी हमारी मजबूरियां हैं ये हैं, एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जानी है, एक दिन अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है जो मुलाकात का दिन है, और अकेले अकेले खड़े होना, घर भी, तालीम भी, कारोबार भी, सब कुछ पीछे रह चुका होगा, और सामने अल्लाह ताला और इधर ये बंदा अकेला, कोई साथ नहीं होगा। उस वक्त इंसान कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती। अब उसको पता चलेगा ये है असल जिंदगी, डर जाओ उस दिन से, उस दिन के लिए कुछ कर लो, उस दिन में नाकामी से बच जाओ, उस दिन जो चीजें अजाब की तरफ ले जाने वाली हों उनसे बच जाओ। वो यौमुल हसरा है, हसरत और अफसोस का दिन, हाय क्यों कर बैठे, हाय क्यों कर लिया, काश मैंने उस जिंदगी में ये कर लिया होता, काश मैंने फलां की बात ना मानी होती, काश मैंने अपने वक्त को सही जगह लगा लिया होता, काश मैं ये कर चुका होता, काश मैं वो कर चुका होता, मुझे क्या हो गया था। फलतफत इस्साक बिस्साक इला रब्बी का यौमा इदिन अलमसाक, पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी और उस दिन वापसी होगी अल्लाह ताला की तरफ। और सफर बहुत लंबा है और ज्यादा राह ना होने के बराबर है, लेकिन किसी को यहाँ पे कोई फिक्र नहीं कि चलो मैं इस तरह नेकी कमा लूं, मैं उस तरह नेकी कमा लूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, जब तक कोई फटे पुराने कपड़ों में फकीर बन के सड़क पे नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम आराम से बैठे रहते हैं। हाँ, खा ही रहे होंगे, पी ही रहे होंगे, किसकी क्या मजबूरी है, कोई किन हालात में है, कोई किस तरह सूद पे कर्जे लेने को मजबूर हो गया। हमें क्या, हमारी शादियां ग्रैंड होनी चाहिए और हमारे पास ये चीजें पैसा उड़ाने के लिए ये जगह होनी चाहिए और हमारी वेकेशन ऐसी होनी चाहिए। वो है जो दिन 50,000 साल के बराबर दिन की तरफ हम दौड़े जा रहे हैं और उस दिन पे दिखाने को कुछ है नहीं। मौत को समझता है गाफिल इख्तताम जिंदगी, अरे ये है शाम जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। तुम समझते हो जिंदगी की शाम हो रही है मौत, ये तो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की असल में सुबह हो रही है। कशफना आंका गिता का फबसरु कल यौम हदीद, उस दिन आंखों के आगे से ना पर्दे हट जाने, फिर तुम्हारी नजर वो 20/20 विजन होगा, बिल्कुल अच्छी तरह नजर आ रहा है। अब पता चल रहा है क्या धोखा था, क्या शराब था, किसके पीछे हम भाग रहे थे और क्या थी जो हकीकत थी। और कफन की जेब नहीं होती के साथ आप कुछ लेके चले जाएं, कुछ है भी नहीं साथ कि कुछ दिखाई दे, कुछ नोट निकाल लें, कुछ जमीनों जायदादों के कागज निकाल के दे दें। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तू कशां कशां अपने रब की तरफ चल रहा है, उससे मुलाकात करने वाला। बंदा दावे करता है ये मेरा वो मेरा, मेरा पैसा मेरा पैसा। अल्लाह हु अकबर, कौन सा पैसा, वो पैसा जो यहीं रह गया। बंदा सोचता है मेरी चीजें, मेरा घर, मेरी ज्वेलरी, ये सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर के लिए सांस चल रही है। हर चीज इंसान छोड़ के रुखसत हो जाता है, सिर्फ दावे ही रह गए, मेरा मेरा, क्या था मेरा। फिर देखो जाके कब्रिस्तानों में कितने लोग लेके बैठे हुए हैं अपना जो कुछ था। ये जिंदगी अल्लाह ताला ने इसलिए दी है कि उसकी कुर्बत हासिल करें, रात सिर्फ सोने के लिए नहीं दी, इसलिए दी है कि अल्लाह ताला के आगे खड़े होके गिर गिराएं। कारोबार और जॉबों से मना नहीं किया, मगर ये ना हो कि ये तुम्हें रब से ही गाफिल करते हैं, हकूक अदा करने से ही गाफिल करते हैं, लोगों की हमदर्दी से गाफिल करते हैं। लोग कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास होना चाहिए बस। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा। तुम मत वफा कुल्लू नफ्सि मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स को जो उसने कमाई की है, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये तो तुम खुद ही लेकर आए ना, जो तुम खुद ही लाए हो वो ही तुम्हें दिया जा रहा है, और तो कुछ नहीं है। किसी और के ऊपर कैसे इल्जाम धरेगा, उसका कसूर उसका कसूर, कसूर तो अपना है ना, तुम खुद जो लाया हो या उसका अंजाम है। चाहे तो जन्नत होगी अगर उसमें जाने के काबिल हुए, या जहन्नुम होगी तो उसमें धकेला जाएगा, ताकि सबको पता चल जाए कौन गलती पे था और कौन हक पे था, क्या सही था और क्या गलत था, क्या झूठ था और धोखा था, और क्या था जो सच्चाई थी। उस रोज जिसने जो कुछ किया होगा बगैर कमी बेशी के सबको बदला मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला अदल वाला है, अल हकम है, अल अदल है। फमई आमल मिसकाला दर्रतिन खैरन यरा वमई आमल मिसकाला दर्रतिन शर्रन यरा, एक एक जर्रे के बराबर भी चीज कोई किसी चट्टान के अंदर भी होगी तो वो भी लाई जाएगी। ये जिंदगी की किताब खोल के रख दी जाएगी, इकरो किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफा भी नफसी कल यो माली का हसीबा, तू अपना हिसाब लेने के लिए आज खुद ही काफी है। अल्लाह अकबर, बल इंसान वाला नफसी ही बसीरा वलो अल्का माआज़ीरा, इंसान खुद जानता है बहुत अच्छी तरह, चाहे वो कितने ही बहाने करे। तो तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुम जन्नत में जाने के काबिल भी हो या नहीं। सिर्फ इंसान कहेगा ना अपनी किताब देख के, माली हादल किताब, क्या हो गया इस किताब को, इसमें ना कोई छोटा ना बड़ा, कुछ भी तो रहा नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ। कैसी है ये किताब, इंसान मान के नहीं देगा, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, झूठ बोलेगा, मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, हाथ और पैर बोलेंगे, ये दीवारें बोलेंगी, ये जमीन बोलेगी, ये पत्थर शजर सब गवाह होंगे। अल्लाह अकबर। तो आखिरी पैगाम जो इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से उतरा, वत्तकू यौमन तुरजाउन फी इला इल्लल्लाह, मत भूल जाना उस दिन को कि तुम्हें वापस लौटना है, तुम्हें जाना है अल्लाह ताला के आगे हाजिरी को। मत भूल जाना कि दुनिया में इतने ही तुम गुम हो जाओ कि तुम्हें याद ही ना रहे कि मुझे जाना भी तो है, और वहां पे सिर्फ जाना नहीं है, उस अदालत में जाके फिर पेश भी तो करना है, क्या कमाई की माँ कसबत, जो उसने कमाई की वो लानी पड़ेगी, वो उसको भुगतना पड़ेगा, वो अच्छा है या बुरा। और कोई जुल्म नहीं किया जाएगा कि तुम्हें किसी और की जगह धार लिया जाए, पकड़ लिया जाए, किसी और की नेकियां ही तुम्हें दे दी जाए, ऐसा कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो इस आयत को पढ़ें और गौरव फिक्र करें, ये आयत बहुत सारे सबक देती है हमें, क्या चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है, और अगर इसको याद रखेंगे ना तो हर चीज फिर सॉल्व हो जाती है, फिर बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब भी हमें मिल जाते हैं। वो तो इतना मुश्किल दिन है, अल्लाह ताला ने फरमाया कई फतत्तकूना इन कफर तुम यौम ये जाल बिलदाना शीबा, कैसे बताओ अगर तुमने कुफर किया ना माना तो कैसे बचोगे उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला दिन है, उस दिन तुम कैसे बचोगे अगर तुमने ना माना, इतना खौफनाक दिन है। अल्लाह अकबर। तो हम सबको बस अपनी फिक्र करनी है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुन
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وما ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ما كسبت وهم لا يظلمون.